Hypocrisy is the tribute that vice pays to virtue. ये आशा है. आप कहेंगे कि दम्भ बड़ी बुरी चीज है. मैं कहता हूं कि आशा की चीज. सवर्णों का बहुमत होते हुए भी अस्पृश्यता निवारण का प्रस्ताव होता है और विरोधी पक्ष सरकार से कहता है कि अत्याचार हो रहे हैं और सरकार कहती है कि हो रहे हैं जरूर, लेकिन तुम्हारे वक्त होते थे उससे कुछ कम ही हो रहे हैं. अब ये तो सारा पॉलिटिक्स है. इसमें से पॉलिटिक्स को हटा दीजिए. जड़ की बात क्या रहती है कि दोनों इसको बुरा मानते हैं. दोनों इतना तो मानते ही हैं कि ये अत्याचार होने नहीं चाहिए. तो ये जो सिचुएशन में रियलिटी है, वास्तविकता है, इसको अस्पृश्यों के नेताओं को पहचानना चाहिए और उनमें अब इतनी कुशलता होनी चाहिए कि इसका लाभ वो उठा सके. इस तरह से दो तरफ से इसको करना होगा. मित्रों, आज की राजनीति इंदिरा मोरारजी या मोरारजी चरण सिंह तक सीमित न रखिए. सरकारों की तख्तियां बदलने से समाज नहीं बदलता. अब ये गेम बहुत हो गया. सरकारें बदलने का खेल बहुत दिन चलने वाला नहीं है. इसमें नागरिक की जान जाएगी और लोकशाही की हत्या हो सकती है. इंदिरा मोरारजी चरण सिंह सबको अपने अपने मतभेद सुलझाने दीजिए, उलझाने दीजिए. देश नागरिक का, इनमें से किसी का नहीं है. जितना हमारा है उतना ही उनका है. इसलिए मैंने शुरू में आपसे कहा कि आज राज्यवाद की पॉलिटिक्स से हमको लोक निष्ठा की राजनीति की तरफ जाना चाहिए. और लोक निष्ठा का अर्थ है नागरिक की एक दूसरे के प्रति निष्ठा, लॉयल्टी ऑफ वन सिटीजन फॉर अनदर सिटीजन. इसकी आज आवश्यकता है. ये सच्चा पॉलिटिक्स है, रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स है. जो जेपी कहता है करो, लेकिन इस देश का तरुण करना नहीं चाहता. उसको एक ही पॉलिटिक्स मालूम है, पुलिस और सरकार के खिलाफ खड़ा होना. और मैं, मेरा अनुभव है कि ये आसान पॉलिटिक्स है, बहुत चीप है ये. क्योंकि पुलिस का सिपाही डंडा चलाता है, लेकिन एक विशिष्ट परिस्थिति में और विशिष्ट जगह ही डंडा चला सकता है. और गुंडा तीनों काल और सब जगह चला सकता है. हमारा आज का ये नौजवान गुंडे का सामना करने के लिए आगे नहीं आ रहा. पुलिस राज से भी गुंडे का राज लोकशाही के लिए, लोकतंत्र के लिए ज्यादा खतरनाक. फ्री फॉर ऑल में क्या होगा? फ्री फॉर हुम? फ्री फॉर हिम हु हैज द लार्जेस्ट कजल. जिसका डंडा सबसे मजबूत है उसी का फ्रीडम होगा, जो आज हो रहा है. इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग साधन संपन्न और प्रतिष्ठित नागरिक अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं. स्वतंत्रता के आते ही समाज के निचले वर्गों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं. इसलिए बढ़ रहे हैं कि सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर सकती है तो नागरिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है. वो आज इस देश का नागरिक कर रहा है। इसका जवाब क्या ये होगा कि स्वतंत्रता को ही हटा लो? अब इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ये इस देश की आज की राजनीति है, रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स। ये इसका जवाब आप खोजिए। क्या पुलिस राज नहीं चाहिए तो उसका उसका अल्टरनेटिव विकल्प गुंडा राज ही होगा, और गुंडा राज नहीं चाहिए तो पुलिस राज ही होगा। और ये दोनों जिसको नहीं चाहिए वो नागरिक कहां होगा? उस नागरिक को जगाने की आवश्यकता है। इसमें समय का विचार हो ही नहीं सकता। देयर इज नो कैलेंडर। क्रांति का कोई पंचांग नहीं होता। इस देश का तरुण जागृत होकर जितनी जल्दी यह कर सकेगा उतनी जल्दी लोकतंत्र प्राणवान होगा, आलोकित होगा। आपकी ये सारी जो विधायक प्रवृत्तियां हैं मित्रों, ये उसकी अंगभूत हैं। यहां मैं इसको आज क्लोज करता हूं। ये अंगभूत हैं। आपके ये सारे प्रयोग संपूर्ण रीति से तब तक सफल नहीं होंगे जब तक ये संदर्भ नहीं बदला। सोशल कॉन्टेक्स्ट को आपको बदलना होगा। तब तक ये अल्जेब्रिक सिंबल्स है, अरिथमेटिकल नहीं। दो और दो चार हो सकते हैं, लेकिन एक्स प्लस वाई चार होंगे कि आठ होंगे कि पचास होंगे कौन जानता। ये सब सांकेतिक हैं। जितने हमारे रचनात्मक काम हैं, ये आगे आने वाले समाज के संकेत हैं। लेकिन इनकी वैल्यू क्या हो, इनका मूल्य क्या हो, ये निर्भर है इस परिस्थिति को, इस कॉन्टेक्स्ट को, संदर्भ को बदलने में हम कितने सफल होते हैं। इसलिए आया तो आपके इस क्षेत्र में जहां एक ग्रुप विधायक काम कर रहा है बगैर संगठन के, स्पॉन्टेनियसली, सहजता से। कितनी अभिनंदनीय वस्तु है, कितना आनंद का विषय है। और फिर भी मैं बोला एक दूसरे ही विषय पर जिस पर शायद आप लोग कम सोचते होंगे। वो इसलिए कि जब तक यह संदर्भ है तब तक आपकी सफलता हमेशा सांकेतिक ही रहेगी, उसमें वास्तविकता नहीं आ सकेगी। इन दोनों को जोड़ना होगा, एक दूसरे के साथ इनका अनुबंध हो, कोरिलेशन हो, इसकी आवश्यकता है। एक प्रश्न का मेरे एक प्रश्न का विवेचन मैंने अभी किया। दूसरा प्रश्न जो मैंने शुरू में उठाया था उसको मैं कल समय रहा तो आपके सामने उसका विवेचन करूंगा। प्रश्न यह है कि यह देश गुलाम क्यों रहा? इतना उज्जवल इतिहास होते हुए भी यह देश गुलाम क्यों रहा? इसका विवेचन कल हम कर लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों का काफ़ी समय भी ले लिया और काफ़ी आप लोगों को मैंने कष्ट भी दिया है, लेकिन आपने ही बुलाया है तो मैं क्षमा भी किस लिए मानूँ? आपने बुलाया है, आप भुगते हैं, जिम्मेवारी आपकी है, मेरी नहीं। सबको नमस्कार। ये व्याख्यान नहीं है, भाषण है। मैं बोलता हूं और बोलने का कहीं आरंभ नहीं होता है, कहीं अंत नहीं होता है। एक व्यक्ति से भी बोलता हूं वो बात कहीं समाप्त नहीं होती है। आप सब लोग इकट्ठा बैठे हैं, आपसे भी बोलता हूं। जीवन जितना अनंत है उतना ही मनुष्य का बोलना भी अनंत ही है। इसलिए आप ये अपेक्षा न रखें कि कल जहां शुरू किया था उस सब का आज मैं उपसंहार कर सकता हूं। लेकिन कल जो एक बात कही थी उसमें से दूसरी बात रह गई थी। दूसरी बात मेरी ये थी कि हमारा देश संस्कृति और दर्शन तत्व ज्ञान की दृष्टि से इतना उन्नत होते हुए भी ये गुलाम क्यों रहा, और अधिकतर लड़ाइयां यह हारा ही क्यों। यह बात तो नहीं थी कि लड़ाई को निषिद्ध माना हो, लड़ाई को धर्मयुद्ध माना, और लड़ाइयां इस देश में हुई। यह बात भी नहीं थी कि पराक्रमी पुरुष कम रहे हों, एक से एक पराक्रमी पुरुष हमारे देश में हुए, फिर भी ये क्यों हारा। तो मैं अध्ययन के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारी संस्कृति में एक कमी रह गई, और वो कमी यह रह गई कि इस देश में मनुष्य के नाते मनुष्य की प्रतिष्ठा नहीं रही। खालिस इंसान, विशुद्ध मानव, केवल मनुष्य के नाते मनुष्य की प्रतिष्ठा नहीं रही। इसका एक लॉजिक भी है, उसको भी थोड़े में रखूंगा। लॉजिक यह है, इसका तर्कशास्त्र यह है कि मनुष्य अपने जीवन के लिए जिम्मेवार है, वो स्वतंत्र है, उसमें अभिक्रम है, इच्छा शक्ति है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने जीवन को बना सकता है, बिगाड़ सकता है, याने बदल सकता है, और यही मनुष्य की श्रेष्ठता है। अपने जीवन को बिगाड़ सकता है, सुधार सकता है, जैसा जीवन मिला है वैसा ही वो रखेगा, ये मनुष्य की मनुष्यता नहीं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने शायद मनुष्य को छोड़ दिया कि यह अपने जीवन का के लिए जिम्मेवार है, इसे कर्म स्वातंत्र है। देव योनि, पशु योनि, ये योनियां भोग योनियां हैं, और मनुष्य कर्म योनि है। ये उसके पीछे लॉजिक है। तर्कशास्त्र तो शुद्ध है कि मनुष्य अपने लिए जिम्मेवार है, उसकी चिंता हम क्यों करें। लेकिन यह तो तर्कशास्त्र हुआ, जीवन में इसका विनियोग नहीं हुआ कभी। अगर मनुष्य स्वतंत्र है तो फिर उसे कहीं पराधीनता होनी नहीं चाहिए। इस जीवन में नहीं और इस जीवन के बाद भी नहीं। ये हमारे जीवन में ये वस्तु नहीं रही। नतीजा यह हुआ कि मनुष्य का संपर्क अपवित्र माना गया। एवरी कॉन्टैक्ट वॉज रिगार्डेड कॉन्टेजियन। मनुष्य का स्पर्श ही संसर्ग माना गया और उससे परहेज किया गया, उसको अलग रखा गया। मनुष्य से जितना अलग रहेगा जो मनुष्य, वो उतना पवित्र समझा जाएगा। अब ये स्वच्छता बिल्कुल अलग चीज है, पवित्रता, अब मुझे मालूम नहीं गुजराती में क्या उसके लिए शब्द है, मराठी में शब्द है सोवणे, प्यूरिटी अलग चीज है और ये सेल्फ राइचस एटीट्यूड होलियर देन गाव मर्यादी। अब वो मर्यादा शब्द असल में वहां होना नहीं चाहिए लेकिन मर्यादी कहते हैं, ठीक है। मर्यादी यानी अपने आप को दूसरों से अलग रखने वाला। इसमें से व्यावर्तक समाज बनता है, व्यावर्तक एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव नहीं, व्यापक नहीं। समाज की भावना व्यापक नहीं बनती, व्यावर्तक बनती है। हिंदू समाज व्यावर्तक समाज है, क्लोज्ड सोसाइटी, बंद समाज है। इसका अर्थ यह है कि वो दूसरों से अलग रहना चाहता है। इसी में से जाति संस्था आई। अब इसको हमने सहिष्णुता माना, कैसी ट्रेविस्टी है, देखिए शब्दों का कैसा अनर्थ किया गया। दूसरों से मैं अलग रहना चाहता हूं और दूसरों को अपने से अलग रखना चाहता हूं, इसे टॉलरेशन कहा गया। क्या यह सहिष्णुता है? मैं आपके जीवन में दखल नहीं देना चाहता और आपको अपने जीवन से अलग रखता हूं, यह सहिष्णुता है? हमारे देश में पड़ोस रहा, सान्निध्य रहा, को एग्जिस्टेंस रहा, लेकिन सहजीवन कभी रहा नहीं। हम एक दूसरे की अगल बगल में रहे। तो पाकिस्तान से बहुत पहले ही इस देश में जातिस्तान मौजूद थे, हर गांव में और हर शहर में, जिनमें को एग्जिस्टेंस था लेकिन शेयरिंग कभी था नहीं, सहजीवन कभी था नहीं, टुगेदरनेस कभी थी नहीं। कल मुझसे पूछा गया कि अब समाजवाद कहां तक हमको लाया और आगे क्या करना है, तो कल विद्यार्थियों से मैं कह रहा था उनकी भाषा में, आपकी भाषा में कहता हूं कि अब हमको यूनिवर्सल कलेक्टिव की तरफ से फैमिली ऑफ मैन की तरफ जाना। सोशलिज्म ने, समाजवाद ने जो विजुअलाइज किया, उसका जो दर्शन था, जिस समाज का उसने स्वप्न देखा, और मित्रों जो स्वप्न नहीं देखता वो समाज को कभी बदल ही नहीं सकता। उस समाज का स्वप्न था यूनिवर्सल कलेक्टिव कम्यून। ये सारी मानव जाति का, इस विश्व का एक कम्यून बनेगा, यूनिवर्सल कम्यून। और हम क्या कहते हैं, कम्यून नहीं, फैमिली ऑफ मैन। कम्यून एक संस्था है और आज के समाज का अभिशाप है इंस्टीट्यूशनलिज्म, संस्थावाद। संस्थावाद जितना प्रबल होगा मानव निष्ठा उतनी क्षीण होगी। यह हमारी जाति संस्था ने किया। मेरे छुटपन में हमारे यहां किसी पर्व त्योहार के दिन ब्राह्मण आया करते थे भोजन के लिए, तो पहले तो हम कुछ जानते नहीं थे, बाद में हमको पता चला कि एक नीच जाति की स्त्री इन्होंने रख ली है। तो हमने अपने दादा से पूछा कि ये कैसा पवित्र ब्राह्मण है, इसको खिलाने से आपका स्वर्ग नजदीक कैसे आ सकता है? ये तो व्यभिचारी ब्राह्मण है, का ये सब कुछ है, लेकिन वो उस स्त्री के हाथ का पानी भी नहीं पीता, इसलिए पवित्र है। आपने देखा ना कि संस्था मानवता को किस तरह से क्षीण कर देती है। इंस्टीट्यूशनलिज्म अभिशाप है इस युग का। समाज का, समाज की इकाई, समाज की यूनिट इंस्टीट्यूशन मानी गई है। इसका नाम वेलफेयरिज्म रखा है। वेलफेयरिज्म में यूनिट संस्था है, व्यक्ति नहीं। और डेमोक्रेसी में व्यक्ति मुख्य है, संस्था नहीं। वन मैन वन वोट से फिर आया वन हेड वन वोट, अब कहां तक आया वन नोज वन वोट, जो सांस लेता है मनुष्य उसके भी मत की, वोट की उतनी ही कीमत है जितनी महात्मा गांधी के वोट की है। मित्रों, या आध्यात्मिक सिद्धांत है, हर मनुष्य का जीवन ही नहीं, हर मनुष्य की डिग्निटी समान है, हर मनुष्य की प्रतिष्ठा समान है। गांधी का खून करने वाले को भी फांसी, भिखारी का खून करने वाले को भी फांसी, ये समानता अंग्रेजों से पहले हमारे देश में कभी थी नहीं। अंग्रेजी राज की बहुत सी बुराइयां हैं, लेकिन ये इवन द डार्केस्ट क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। अंग्रेज हमको कुछ वरदान दे गए इस देश में, उनमें से एक ये वरदान है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। अब पुराण मतवादी बहुत सी गप्पें आपको सुनाएंगे कि हमारे यहां ऐसी डेमोक्रेसी थी, वैसी थी, जयसवाल की किताब देखो, ये देखो, वो देखो। सब देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो डेमोक्रेसी आज हमारे देश में है वैसी कभी थी नहीं। अब तो ऐसा हुआ ना कि विमान देख लिए, रेलगाड़ियां देख ली, अब वेदों में खोज लेते हैं कि ये इस मंत्र में रेलगाड़ी है और इस मंत्र में विमान है, तो भाई पहले क्यों नहीं खोजी, या पहले आने से पहले क्यों नहीं खोज सके, कहाँ गई थी अकल उस वक्त चरने के लिए, घास खाने। चीज को देखने के बाद उसको खोज लेना ईगो को इन्फ्लेट करता है, अहंकार में हवा भरता है और कुछ नहीं करता। हमारे देश में हमने सबको हजम किया, हूणों को किया, दूसरे जितनी आई टोलियां सबको हजम कर लिया, लेकिन मुसलमान और अंग्रेज को हजम नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? ये भी तो मुट्ठी भरे ही आए थे। और ये भी बात नहीं है कि हमारे देश के लोग कम बहादुर थे, इनको हजम क्यों नहीं कर सके? इसका मुख्य कारण यह है कि इस्लाम में जितनी समानता है मुसलमान मुसलमान के बीच, उतनी दुनिया के और किसी समाज में नहीं। ईसाइयों में काले गोरे का भेद है, लेकिन मुसलमान में काले गोरे का भी भेद नहीं। इस समानता का आकर्षण हमारे समाज के उन लोगों को था जो लोग जाति में रह नहीं सकते, जाति में जिनकी इज्जत नहीं थी उनको मुस्लिम समाज की इस समानता का आकर्षण था। जबरदस्ती हुई, लोभ हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन जबरदस्ती और लोभ से इतना धर्मांतर होता नहीं है। किसी गुण की अच्छाई की आवश्यकता होती है, उस गुण का आकर्षण होता है। सारे मुसलमान बराबर हैं, यह बहुत बड़ा आकर्षण था और कारण यह था कि जाति छोड़ने का दूसरा कोई उपाय ही नहीं था। भंगी को भंगी नहीं रहना है तो हिंदू न रहे, इसके सिवा कोई उपाय ही नहीं था। इसलिए हिंदू समाज में से निर्यात ही निर्यात हुआ है। यह चित्र है जिसका हमारे पॉलिटिक्स पर प्रभाव है, सब जगह है, इसलिए उसका मैं थोड़े में विश्लेषण कर रहा हूं। इस चित्र को आप देखिए, ईसाई आया, इसके बाद अंग्रेज आया, वो भी मुट्ठी भर आए, लेकिन मॉडर्न वैल्यूज लेकर आए, आधुनिक मूल्य लेकर आए। विज्ञान लेकर तो आए ही, लेकिन विज्ञान के साथ साथ मॉडर्न वैल्यूज लेकर आए, और मॉडर्न वैल्यूज में सबसे बड़ा मूल्य है ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिज्म उसका नाम रखा है उन लोगों ने, मानववाद, मैं मानव निष्ठा कहता हूं। जेम्स जॉर्ज होलियोक मार्क्स से पहले था, ये सेक्युलरिज्म शब्द का जनक है। इसका दिया हुआ यह शब्द है, मित्रों घबराइए नहीं, सेक्युलरिज्म भौतिकवाद नहीं। सेक्युलरिज्म मटीरियलिज्म नहीं, ह्यूमनिज्म है, मानव निष्ठा है। और यह धार्मिकता से अधिक आध्यात्मिक है, धार्मिकता आध्यात्मिक नहीं है।